नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और उसके आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दानियल जो एक परमेश्वर का दास है, उसके विरुद्ध में मादी और फारसी राज्य काल में दोष ढूंढने का यत्न किया गया ताकि उस पर दोष लगाया जाए, ताकि उसको सजा दिला सके। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस विषय पर अधिक विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते हैं तो आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के साथ बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार और निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी चंगाई और छुटकारा दीजिए, उन्हें अपनी शांति दीजिए, ताकि वे इस बात को जान सके कि आप दानियल के परमेश्वर हैं, जिसने सदरक, मेसक और अबेदनगो को बचाया, वही परमेश्वर आज उन्हें भी शांति दे सकता है। अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक और उसके 6 अध्याय को निकाल लीजिए। दानियल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इन अधिपतियों और अध्यक्षों का षड्यंत्र धूर्तता से पूर्ण था। राजा दारा एक भला मनुष्य था, जैसा इतिहास से प्रकट होता है, और मेरे विचार में दानियल की पुस्तक का निहितार्थ भी यही है, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह चटुकारी पसंद करता था। यहां पर ध्यान दें कि यह चटुकारी दारा राजा को पसंद था। हमारे युग की एक त्रासदी यह है कि पैसे वाले लोग उन्हीं संस्थाओं और संस्थानों को सहयोग प्रदान करते हैं जिनके अधिकारी उनकी चापलूसी करें, परंतु मेरा मानना यह है कि हमें आर्थिक सहयोग पाने के लिए चापलूसी के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए कि कोई प्रभु की सेवा में योगदान दे। यदि परमेश्वर चाहता है तो वह निश्चय ही मनुष्यों को दान देने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत समय पहले मुझे यह बोध हो गया था कि मैं न तो उतना बुरा हूँ जितना लोग मुझे बुरा समझते हैं, मेरे बैरे मुझे कहते हैं, और न ही कि उतना भला हूँ जितना मेरे मित्र मुझे कहते हैं। चापलूसी में बह जाने का खतरा सदैव मंडराता रहता है। मैं अपने बाइबल अध्ययन के विद्यार्थियों से कहता था, मेरे मित्रों, आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितनी भी छोटी कलीसिया के प्रभु के दास क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रशंसा के लिए सदैव एक प्रिय महिला को या पुरुष को तैयार रखेगा। आपका प्रचार कितना भी रद्दी रहा हो, वह महिला आकर आपसे कहेगी, आप तो दूसरे वाइट डीएल मूडी लगते हैं। सराहना करने वाले लोग होना अच्छा है, परंतु आप भरम जाल में न फंस जाएं। यह एक सदाकालीन खतरा है। दारा उनके जाल में फंस गया और उसने अध्यादेश जारी कर दिया कि उसकी उपासना की जाए। तो आइए आज हम आगे अपने अध्ययन में बढ़ें। दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ें। लिखा है, इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। मेरे मित्रों, राजा के द्वारा मुहर लग जाने के बाद आज्ञा बदली नहीं जा सकती थी, राजा भी उसे बदल नहीं सकता था। अब दानियल को जान का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो आइए देखें कि दानियल क्या करता है। हम देखते हैं कि दानियल प्रार्थना करता है। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इस नए नियम के प्रति दानियल की प्रतिक्रिया को आप देखिए। उसने वह खिड़की खोलकर ना तो किसी प्रकार का दुस्साहस किया और न ही मूर्खता का कोई काम किया। वह तो वर्षों से ऐसा ही करता चला आ रहा था। वह पीछे नहीं हटा और न ही उसने खिड़की बंद करके कायरता का प्रदर्शन किया और न ही समझौते का प्रदर्शन किया, परंतु वह अपने दैनिक प्रार्थना करता रहा। मित्रों, मैं एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं कि वह घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय हमारी मुद्रा कैसी हो, यह एक सामान्य प्रश्न है। प्रार्थना के लिए विशेष मुद्रा होना आवश्यक है, इस पर मुझे संदेह होता है। विक्टर ह्यूगो का विचार है कि शरीर किसी भी मुद्रा में हो, आत्मा घुटने टेक कर ही प्रार्थना करती है। मनुष्य की आत्मा किस मुद्रा में है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि प्रार्थना में एक विशेष मुद्रा अपनाएं, तो वह यहां दी गई है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। दानियल यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। क्यों? उसके जीवन का यही लक्ष्य था, और राजा दारा की आज्ञा कुछ भी हो, वह अपने लक्ष्य से टला नहीं। उस समय परमेश्वर की प्रजा का कोई भी सदस्य यरूशलेम से बाहर जाता था तो वह प्रार्थना करते समय अपना मुंह यरूशलेम की ओर ही रखता था, परंतु आज किसी स्थान का ऐसा महत्व नहीं रह गया है। योहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 और 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और हम दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वे तो अवसर की खोज में थे ही, और यह उनके लिए एक महान अवसर था। दानियल की प्रतिष्ठा थी कि वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगा, और इस बात को वे भी जानते थे, और यही कारण था कि वे उसे फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। हम पढ़ते हैं दानियल 6:12-14 पद में, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। मेरे मित्रों, उन्होंने जाकर राजा से कहा कि दानियल राजा की आज्ञा को तोड़ रहा है। वह खिड़की पर यरूशलेम की ओर मुंह करके घुटना टेक करके प्रार्थना करता है। मेरा विश्वास करें कि यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। वह अपनी ही आज्ञा को नहीं तोड़ सकता था। नबूकदनेस्सर अपनी आज्ञा को अनदेखा करने का सामर्थ्य रखता था। देखिए कैसे एक राज्य के बाद दूसरा राज्य दुर्बल होता जा रहा है। यहाँ पर राजा स्वयं ही कुछ बदल नहीं सकता था। दानियल की पुस्तक 6:15 पद में लिखा है, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख के मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। दानियल को शेरों की मान में डाला जाएगा और राजा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ही यह आज्ञा निकाली है। तो हम आगे देखते हैं शेरों की मान में दानियल का डाला जाना। दानियल 6:16 पद में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मेरे विचार में तो राजा को स्वयं नहीं पता था कि वह क्या कह रहा था। यह वैसा ही है जैसा आज हम किसी दुखी मनुष्य को देखकर कहते हैं, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। परंतु जब हम उस स्थिति में हों, तब हम स्वयं प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। यद्यपि राजा दारा जानता था कि दानियल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान एवं प्रधान परम प्रधान प्रभु है और वह दानियल को बचा सकता है। उसने यह भी देखा था कि दानियल परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है। 2 विश्व शक्तियों के दरबार में दानियल की गवाही में चमत्कार निहित थे। उसका अप्रभावित और दिखावे से रहित जीवन उस युग में परमेश्वर को मोक्षक अनुग्रह की महान गवाही था। जी हाँ, दानियल सबके लिए परमेश्वर की ओर से एक गवाह था। हम आगे देखते हैं दानियल 6:17 पद में, तब एक पत्थर लाकर उस गढ़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों के अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। उन्होंने उसे शेरों की मान में डालकर उसके ऊपर एक पत्थर रखा तथा उस पत्थर पर राजा की मुहर लगाई गई। वे शेर युवा शेर थे जिसके दांत नुकीले थे, वे आक्रामक थे। एक बार एक पुरुष को चिड़ियाघर में नौकरी मिल गई। उसे आदेश मिला कि वह शेरों की मांद में जाकर उन्हें भोजन दे। उसके इनकार करने पर वहां के अभिभावक अर्थात अधिकारी ने कहा, उन शेरों के दांत नहीं है। उस सेवक ने उत्तर दिया, मुझे चबाने के लिए उनके मसूड़े ही काफी हैं। मेरे प्रियो, जिन शेरों की मांद में दानियल को डाला गया था, उन शेरों के दांत थे और वे भयानक शेर थे। परंतु दानियल के लिए उस रात सबसे सुरक्षित विश्राम का स्थान वही सिद्ध हुआ था। रोचक बात तो यह है कि दानियल निश्चित रूप से सो रहा था और राजा चिंता के कारण सो नहीं पा रहा था। वह पूरी रात बेचैन था। मेरे मित्रों, हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि दानियल ने अपनी ईश्वर भक्ति के आड़े राजा की आज्ञा को भी नहीं आने दिया और परिणाम स्वरूप उसे शेरों की मांद में डाला गया है। राजा दारा दानियल को मन से चाहता था, परंतु वह विवश था। उस युग में कानून पारित हो जाने के बाद राजा भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। अतः दानियल को शेरों की मांद में डाला गया है। और अब देखिए कि अगले दिन क्या होता है। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई भी वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, दानियल शेरों के बीच में निश्चिंत सो गया, परंतु राजा दानियल के लिए चिंतित था, अतः वह पूरी रात नहीं सो पाया था। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, भोर को पाव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? मेरे मित्रों, मैं यह नहीं कह सकता कि राजा दानियल से प्रतिक्रिया पाने की आशा कर रहा था या नहीं, परंतु दानियल ने उसे उत्तर दिया। दानियल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, हे राजा, तू युग युग जीवित रह। दानियल का विनम्र एवं सम्मान सूचक अभिवादन, यह ऐसा था जैसे वह कह रहा हो, हे राजा, क्या तू शांति की नींद सोया था? राजा पूरी रात सो नहीं पाया था, परंतु दानियल अच्छी नींद शेरों के बीच में सोया था। दानियल को भी वही आश्वासन दिया गया था कि जो उसके 3 साथियों को आग के भट्ठे में डाले जाते समय दिया गया था। अपना दूत, यह वही चौथा व्यक्ति था जिसे नबूकदनेस्सर ने आग के भट्ठे में देखा था। यह अलौकिक प्रभु यीशु था। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गढ़े में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गढ़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मेरे मित्रों, राजा दानियल से प्रेम करता था और उसे सुरक्षित देख अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दानियल विश्वास के द्वारा बचाया गया था। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए गए, आग की ज्वाला को शांत किया गया, तलवार की धार से बच निकले। जी हाँ, जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके जीवन के साथ यही परिणाम होता है। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, जीवन दान देता है, बीमारों से छुटकारा देता है, समस्याओं से छुटकारा देता है, जब हम परमेश्वर में स्थिर और दृढ़ बने रहते हैं। आगे देखिए क्या होता है। दानियल 6 अध्याय के 24 पद में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गढ़े में डाल दिए जाएं, और वे गढ़े की पेंदी तक भी न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। मेरे मित्रों, दानियल के बैरियों का यह कायरता का षड्यंत्र पकड़ा गया और उन्हें सब परिवार शेरों के मध्य में डाल दिया गया। इस बार शेरों ने अपना स्वभाव प्रकट किया कि वे कैसे खूंखार और निर्दयी थे। कई बार एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार नाश होता है, एक पाप के कारण पूरा परिवार दुखी होता है, और इन्होंने ऐसा ही किया जिसके कारण पूरा परिवार उनका नाश हो गया। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि दानियल के समृद्धि और दारा की आज्ञा। दानियल के पुस्तक 6 अध्याय के 25 पद में लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। अब दारा एक विश्वव्यापी आदेश निकालता है जो वास्तव में उसकी अपनी गवाही है। उसने भी उसी शांति का आभास किया जो दानियल को प्राप्त हुई थी, 4 अध्याय उसके 1 पद में। शांति प्राप्त करने की यह गवाही उसी व्यक्ति की है जो पिछली रात अशांत था और पूरी रात वह सो नहीं पा रहा था। आगे लिखा है दानियल 6 अध्याय के 26 और 27 पद में, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। दारा ने आज्ञा दी कि दानियल के परमेश्वर को माना जाए, और उसने गवाही दी कि वही जीवित परमेश्वर है। मूर्तियों के विरुद्ध में उसने गवाही दी, और उसने कहा कि दानियल का परमेश्वर ही परम प्रधान है। शेरों के मध्य दानियल को सुरक्षित रखने के परमेश्वर के चमत्कार को देख करके लोग परमेश्वर के पास आने लगे। जी हाँ, दारा परमेश्वर के निकट लाया गया क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्य को अपनी आंखों से देखा था। आगे लिखा है दानियल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 28 पद में, इस प्रकार दानियल दारा और कुश्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। मेरे मित्रों, दानियल का पद अब सुरक्षित था और कुश्रू के समय तक वह जीवित रहा। राजा कुश्रू ही ने यहूदियों को स्वदेश लौट जाने की अनुमति दी, जिसे हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 22 और 23 पद और एज्रा 1 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर दानियल की पुस्तक का ऐतिहासिक भाग समाप्त होता है। इससे आगे दानियल को दिए गए दर्शन और भविष्यवाणियों का दृष्टांत है। इससे अध्ययन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने आप को अन्य जातियों पर भी प्रकट कर रहा है अपने भक्तों और अपने दासों के द्वारा से। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही परमेश्वर के सामर्थ को देखा है कि उसने दानियल को सिंहों की मांद से बचा लिया, और वही परमेश्वर आज आपको भी परिस्थितियों से, बीमारियों से बचा सकता है, आपको आनंद और शांति दे सकता है। क्यों ना आज हम उस महान परमेश्वर के पास आएं। राजा दारा ने यह आज्ञा निकाली, जहां तक उसका राज्य था वहां के लोग इस बात को जान ले कि दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप भी उस परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी जीवन की भी रक्षा करना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर हमको मिली।